عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة عبسہ پر آج ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے. اصل میں یہ تفسیر نہیں ہے, یہ صرف تدبر القرآن ہے. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورة محمد میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ تدبر بڑا مشکل لفظ ہے اردو کے اعتبار سے بھی, اس لیے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو یہ مت سوچئے کہ آپ کو اردو نہیں آتی. لیکن تدبر ہوتا ہے کسی چیز کی ڈیپتھ میں جانا, غور و فکر. اس کے اندر ایک ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ, سمپل سی بات ہے, کوئی آپ کو بات کہتا ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن وہ جو چلا جاتا ہے تو بعد میں اس میں سے ایک اور بات جو سمجھ آتی ہے نا ہمیں, وہ تدبر ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس خوبصورت کلام میں, اس صورت میں کیا ہے. اس کا نام بہت انیوژل ہے. اگر آپ عبسہ کا لفظ دیکھیں, فرون کرنا, ہی فرونڈ, اس نے تیوری چڑھائی, یعنی یہ کسی نبی کا نام نہیں. کیونکہ عموماً دیکھیے کہ قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ انبیاء کے نام ہوں گے, جنتوں کا نام ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لیکن عبسہ ایک فعل ہے, فعل مین از جسٹ لائک ورب. انگلش میں دیکھیں ہی فرونڈ, اردو میں دیکھیں اس نے تیوری چڑھائی. اب تیوری چڑھانا, منہ بسورنا, باڈی ایکشن. اصل میں میں بہت سوچا کرتی تھی کہ اس صورت کے اندر ایسا کیوں ہے, تو انشاءاللہ آپ کو دیکھے گا ایک بہت بڑی حقیقت ہے اس میں. اور صورت کا پہلی ہی آیت میں اس نام کا مقصد اور وجہ بھی سمجھ آئے گی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتی ہوں آپ کو, انسیڈنٹ جس کو ہم شان نزول کہہ سکتے ہیں یا ریزن آف ریولیشن, کہ آخر یہ صورت کیوں نازل ہوئی, کب ہوئی. تو آپ کہہ لیجئے کہ قرآن پاک کا بیشتر حصہ جو ہے الحمدللہ اس سیکیورڈ, اور اس کے اوپر بہت زیادہ یقینی طور پہ صحابہ کرام نے بتایا. مجھے پتا ہے کہ یہ صورت کب نازل ہوئی. ایون ایک صحابی ہیں, ناموں میں نہ الجھیں تو بہتر ہے, کوئی بھی ہوں گے, بس یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی اتنا علم دے دے. کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کب کون سی صورت نازل ہوئی. گرمیوں میں ہوئی, سردیوں میں ہوئی, صبحوں میں ہوئی, شام میں ہوئی, آٹم یعنی خزاں میں ہوئی, سپرنگ یعنی بہار میں ہوئی. میں جانتا ہوں, یعنی سائے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. کیوں؟ کہ کہیں میں یہ نالج کی اپرچونیٹی مس نہ کر دوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم کا اتنا شوق لگا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا. ایک صفت جس کا قرآن پاک میں بہت دفعہ ذکر ہے, اور وہ کیا ہے کہ آپ کے دل میں اس بات کی بڑی تڑپ تھی. کیا؟ کہ لوگ ایمان لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو تڑپ تھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آپ تو اس بات کے پیچھے اپنی جان گھلا دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کی بہت تڑپ تھی کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں, اسلام قبول کر لیں, مسلمان ہو جائیں. کیونکہ اسلام کو پانے کے بعد انسان کو جو دولت ملتی ہے نا, وہ دولت پانے کے بعد حقیقت میں انسان کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو آم کھانے کے بعد اس شخص کی ہوتی ہے جو کسی کو آم آفر کرے اور وہ کہتے میں نہیں کھاتا, پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے, اتنا بڑا پیلے رنگ کا, یہ تو پتھر لگ رہا ہے, آئی ڈونٹ نو. اب آپ کو آم پسند ہے اور وہ بھی پاکستانی آم, اور آپ کسی کو پیش کریں کہ آپ آم کھائیں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں کھاتا, تو آپ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے میں ہی کھا لوں گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن اگر ریئل میں آپ کسی ایسے بندے کو آم آفر کریں جس سے آپ پیار کرتے ہیں اور وہ کہے میں نہیں کھاتا, پتہ نہیں کیا کیسا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ چلو ایک دفعہ چکھو تو صحیح, اچھا نہ لگا نا تو پھر منی بیک گارنٹی. دل میں تڑپ ہوتی ہے نا. اسی طرح سے کوئی بھی مزے کی چیز, ٹیسٹی, جو بھی چیز آپ اپنی زندگی میں انجوائے کرتے ہیں نا, اس کو سوچئے. آپ اس کو انجوائے کریں, دوسرے کو آپ آفر کریں اور وہ ناک بھون چڑھائے, تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے, اصل میں اس نے چکھا نہیں ہے. اگر ایک دفعہ اس نے چکھ لیا تو یہ کبھی چھوڑے گا بھی نہیں ہے. بس یاد رکھیے کہ اسلام, اللہ کی محبت, और उन सब से बढ़कर अल्लाह की ये किताब भी एक ऐसा ही टेस्ट है। जिसको ये टेस्ट लग गया उसके दिल में एक तड़प ज़रूर होती है कि मेरे प्यारे को भी यही टेस्ट लग जाए, चाहे वो दोस्त हो, वो सहेली हो, वो बहन हो, वो बच्चे हो। और हकीकत में ये कंटेजियस है, वो बीमारी जो एक से दूसरे को लग जाती है, बस यानी दिल चाहता है कि ये दूसरे को भी लगे। नबी सल्लम ने अल्लाह का ये पैगाम देना शुरू किया। अब नबी के लिए हर शख्स इसके लिए काबिल एहतराम होता है कि जो इस्लाम पे आता है। लेकिन इस्लाम का एक मिजाज समझिए, जब कोई चीज़ बड़े लोग एक्सेप्ट कर ले तो क्या होता है। बड़े लोग से मुराद इन लीड्स। अब मसला ये कि हमारी उर्दू बड़ी स्कील लगती है इंग्लिश के में, इंग्लिश है तो हम कहते हैं शुक्र है मादरी जुबान में बोला इन्होंने। इन लीड लफ्ज़ समझ गए, और इससे ऊपर और आसान लफ्ज़ आज के दौर में इन लीड को क्या कहते हैं, डिज़ाइनर्स। यानी वो चीज़ जो दूसरा कोई पहने और दूसरा देख के उसको कहे वाह अच्छा लग रहा है, मैं भी ऐसी लगूंगी, मैं भी ले लेती हूँ। जब कोई किसी सोसाइटी का फेमस, जो चाहे मनी वाइज, स्टेटस वाइज, मसलन कोई पॉलिटिशियन, कोई एक्टर्स एक्ट्रेस एक्टर, कोई गुलकार, कोई क्रिकेटर, कोई फेमस पर्सन जब किसी चीज़ को ले जाता है ना, तो वो बहुत इजी हो जाता है दूसरों का भी उसको लेना। सीधी सी बात है, अमीर लोग दीन को पकड़ेंगे तो लोगों को दीन अमीर लगेगा, और गरीब पकड़ेंगे लोग कहेंगे दीन भी गरीब है। पढ़े लिखे लोग जब दीन को पकड़ते हैं ना तो लोगों को दीन बड़ा पढ़ा लिखा लगता है, और अनपढ़ लोग दुनियावी एतबार से जब दीन को पकड़ते हैं ना तो लोगों को दीन भी अनपढ़ लगता है। खूबसूरत लोग दीन पकड़ेंगे लोग कहते हैं दीन भी खूबसूरत है, और बाद भी इसे शक्ल के पकड़े बस। अब इससे आगे आप खुद ही समझ लीजिए। अल्लाह सुब्हान तआला की एक सुन्नत रही है कि जब भी नबियों ने अल्लाह की बात पेश की है ना, तो उसको कबूल करने में सबसे ज़्यादा हेजिटेंट, सबसे ज़्यादा रुकावट, जब जिनके हर्डल्स आए थे, जिनके बीच में रुकावटें आई थी, वो यही इन लीड्स होते थे। इसको आज के दौर में समझिए, मैं एक सिंपल सी मिसाल दूंगी, ये कोई हमारी तफसीर की या फिक की क्लास नहीं है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। मसलन आप देखिए कि एक किसान है, किसी गांव में रहता है, उसका काम क्या है कि उसने ज़मीन में जाकर बीज डालना है और कुछ महीने की मेहनत के बाद उधर से फसल काट लेनी है। उसका एक्शन प्लान कहाँ तक है, गोडी करना, हल चलाना, पानी देना, फिर बीज डालकर इंतज़ार करना, अल्लाह से कहना बारिश हो जाए, फिर फसल को देखकर खुश होना, और जब फसल बड़ी हो तो उसको काट के तो बाजार में बेच देना। इसके लिए दीन का वो सारा इकोनॉमिकल सेटअप समझना, या इस्लाम में क्या प्रोहिबिटेड है क्या नहीं है, सूद की क्या शर्तें हैं, रिश्वत कैसे है, और किसी का माल बातिल से कैसे, इसको क्या लगे। सीधी सी बात है, वो कहेगा अल्लाह करे सब कुछ ही हो जाए। इसके मुकाबले में शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पूरी दुनिया के बैंकों से उसकी डील, ठीक है, उसके उसको कभी कंसाइनमेंट लेना पड़ता है, कभी उसको कैश पे लेना पड़ता है, कभी बाद में लेना पड़ता है। अब उसके लिए दीन पे अमल करना निस्बतन उसके बहुत मुश्किल होगा। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। सीधी सी बात है कि जिसका जितना लोगों से एक्शन ज़्यादा होगा, जितना इंट्रैक्शन होगा सोसाइटी में, उसको हर कदम पे फिर पूछना पड़ेगा कि अच्छा अल्लाह का क्या हुक्म है और सोसाइटी का क्या हुक्म है। बस ये है बिग प्रॉब्लम। इसकी वजह से होता क्या है कि जो इन लीड्स होते हैं ना, वो थोड़े रिलक्टेंट रहते हैं, पीछे रहते हैं, और शैतान एक बात दिल में क्या डालता है कि सुनो अभी तो पता ही नहीं है, तो कल पता लग गया, फिर ना माना तो बड़ी बुरी बात है। आप अपनी ज़ुबान में इसको मेडिकल की लाइन में समझें, किसी मरीज को पता लग जाए कि लेमन पीने से उसका गला ख़राब होगा, या ना पता लगे, क्या इससे गला ख़राब होने का ताल्लुक है? पता लगे तो पिए तो फिर ख़राब होगा, या पता ना लगे तो पी ले तो नहीं ख़राब होगा? बस वो जो बीच की हर्डल्स है ना, वो नहीं आने देती। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में भेजा, आपने बात शुरू कर दी, और याद रखिए 40 ईयर्स। हर सूरत से पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं ना सीरत को, क्योंकि उसको समझे बगैर हम कुरान को समझ नहीं सकते, क्योंकि कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। अब वहाँ कुछ बड़े बड़े सरदार थे, जिसको आज के दौर में आप ब्यूरोक्रेट्स कह लीजिए, पॉलिटिशियंस कह लीजिए। अल्लाह के नबी की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इस्लाम पे आ जाए। मसलन जैसे अबू जहल नाम का एक शख्स था, फिर इसी तरह आपके अपने चचा थे अबू लहब थे, और बड़े बड़े नाम थे, उतबा था, शैबा था, रबिया था। आप उनकी दौलत से मरूब नहीं थे, शोहरत से भी नहीं थे, आपको ये पता था कि अगर इनमें से एक आ गया ना तो इनको देखने वालों ने भी आ जाना है। एक दिन क्या हुआ कि किसी भी तरह घेर घार कर अल्लाह ताला इनको नबी सल्लम के पास ले आया। आप कह लीजिए कि नबी सल्लम के तो दिल की कली खिल गई ना, क्योंकि एक सच्चा दाई दीन, ताई दीन, उसके लिए तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात ही नहीं है कि वो बंदा खुद आ जाए जिसके आने की वो दुआएं करे। बस बड़ा स्पिरिचुअल सा टाइम था और अल्लाह के नबी इंजॉय कर रहे होंगे। आप उनको इस्लाम की बेसिक्स बता रहे थे कि देखो तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हें ये फ़ायदा होगा, और तुम्हें दूर से चीज़ मुश्किल लगती है, असल में ये मुश्किल नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग ये बात जो कहते हैं ना कि दीन के अंदर जाएंगे तो ज़िंदगी मुश्किल होगी, आप इस किताब को पढ़ने से पहले क्या सोचते थे? तो अक्सर यही कहते हैं कि हम बहुत डरते थे कि कुरान पढ़ने से ज़िंदगी मुश्किल होगी, रुकावटें आएंगी, ये होगा वो होगा, और फिर ना मानना तो बड़ी बात है। तो मैंने कहती थी अब क्या हुआ, तो कहते थे कि ये पहले नहीं पता था। मैं इसकी एक मिसाल देती हूँ। देखिए आपके पास एक दूर एक आपको इधर बहुत बड़ा एक गट्ठर सा दिखे, अब वो इतना बड़ा सा है और आप वहाँ पीछे वाली लाइन पे हैं, तो आपसे सिस्टर शिनाज कहें कि ज़रा आप इसको उठाती हैं, मेरी मदद करती हैं, या आप इसको ज़रा उठा के सर पे रखती हैं। दूर वाला बंदा जो हाय इतना बड़ा, मेरी तो गर्दन थक जाएगी, मेरे तो शोल्डर्स खिंच जाएंगे, ये होगा वो होगा, वो कहती कम ऑन इधर तो आए, इधर तो आए। आप वहाँ से उठ के डरते कदमों से इधर आई और आपने वो गट्ठर जब हिलाया, ओ ये तो स्टीरियो फॉर्म है, ओ हो इसमें तो कॉटन है, ये तो रुई है, यानी इट्स जस्ट लाइक बबल। आप ज़रा सा पकड़ के जब उसको सर पे रखते हैं, हो पता क्या जाएगा कि ऊपर हो सकता है सूरज था तो आप उससे वो उम्ब्रेला बन गया आपके लिए। मेरा ले बात समझ आ गई है। दूर से देखने वालों को दीन एक बोझ लगता है, करीब आने पे वो शेल्टर बन जाता है। ये सरदार नबी सल्लम से निगोसिएशंस कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, अब यहाँ असल में आबसा का लफ्ज़ समझाऊंगी, आयतों पे तो हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन कहानी की तरह अगर सूरत समझ आ गई और उसका थीम समझ आ गया तो बात क्लियर होगी। एक सहाबी थे, उनका नाम था इब्ने उम्मे मकतूम। इब्न कहते हैं अरबी में बेटे को, उम कहते हैं माँ को, मकतूम नाम था, उम्मे मकतूम के बेटे। अल्लाह की शान देखिए कि ये नबीना थे। अब ही वॉज ब्लाइंड, उनको नहीं पता कि नबी सल्लम इस वक्त किस सिनेरियो में बैठे हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे इस वक्त हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इतने प्यार से सुन रहे हैं, और एकदम बाहर से कोई आए और उछलता कूदता भागता दौड़ता और मेरे से कोई बात करने लगे, तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक तो मैनर्स के खिलाफ, एटिकेट्स के खिलाफ, दूसरी बात है कि आपका टेम्पो टूट जाएगा। बस इतनी सी बात थी। ही वॉज मुस्लिम, बस कहते मुस्लिम नहीं थे बट ही वॉज इंक्लाइन टू बी मुस्लिम, कोई भी थे लेकिन ही वॉज हिज ओन पर्सन। उन्होंने सेंसिटिविटी नहीं ली एटमोसफेयर की, माहौल की। बस दफ़ा लोग ऐसे होते हैं, इवन दावत और तबलीग में कोई ऐसी बात कर देते हैं जो उस माहौल में नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आकर अल्लाह के नबी से इस्लाम के बारे में एक सवाल पूछ लिया। कहते हैं कोई आयत थी उनको समझ नहीं आई, और आप खुद जानते हैं अगर आप मेंटली रिटार्ड या हैंडीकैप्ड लोगों को जाने तो वो एक ख़ास हद के बाद इरीटेटेड हो जाते हैं, लेकिन वो उस मामले को नहीं समझ सकते थे। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम को इंटरप्ट करने की कोशिश की, आपने एक दफ़ा हल्का सा ज़रा सा कुछ इशारा कर दिया होगा, बट ही नेवर अंडरस्टैंड बिकॉज वो नहीं देख सकते थे। बस उस पे कह लीजिए कि नबी सल्लम को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो आपने नागवारी, नागवारी कह लीजिए कि जिसको आप कह सकते हैं कि किसी भी खिलाफे तबीयत चीज़ को देकर जो सबसे लाइट फेस एक्सप्रेशन बनता है, बस आपने हल्की सी तेवरी चढ़ाई। क्या अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम ने ये देखा? ही कैंट सी, असमी ने देख लिया, ये सूरत नाजिल हो गई कि आपने ये क्या किया, जो सुनना नहीं चाह रहे, जो सिर्फ आपके साथ इफ्स एंड बट्स में ही पड़े हुए हैं, और जो सिर्फ प्रोज एंड कॉन ही अभी तोल रहे हैं, इफ़ वी डू दिस व्हाट विल हैपन, और किस के सीक्वेंसेस क्या होंगे, अच्छा अगर हमने ना किया तो क्या होगा, यानी दे आर नॉट सीरियस। नबी की ख्वाहिश थी कि वो सीखे, उनकी ख्वाहिश नहीं थी। इसके बारे से एक शख्स ईगर टू लर्न, जिसके अंदर तड़प भी है तलब भी है, वो खुद आया है, तो आप उनको छोड़कर इसको इग्नोर कर रहे हैं, यू शुडन डू दिस। इससे एक तो बात समझिए कि हक, जैसे आप सब, मैं तो आपको ही कहूँगी रियली, कि कुरान सीखना, कुरान को सीखने के लिए आने वालों की अल्लाह की नज़र में इतनी बड़ी अहमियत है कि आने वालों के सीखने, यानी आप सब अपने आप को इब्ने मकतूम समझें। तड़प थी आप में, ये अल्लाह लेकर आते हैं ना आपको, क्योंकि आप में तलब है। बस ये बात इधर बता दी कि ऐ नबी, चाहे इब्ने मकतूम, इब्ने उम्मे मकतूम नाबीना है, आपको इनको अहमियत देनी चाहिए थी। एक बहुत खूबसूरत असूल बन गया कि जिसके अंदर तलब है ना उसको दो, ख्वाहिश सबके लिए रखो, तड़प सबके लिए रखो, लेकिन जो एटीट्यूड शो करे तो आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं। याद रखिएगा, कुरान के सीखने का علم کا، دین کا، اللہ کی محبت کا تعلق آپ کی ذہانت سے نہیں ہے. ہاؤ انٹیلیجنٹ یو آر. بس آپ دیکھیں کہ اسی آڈیٹوریم میں کتنے لوگ آ کے سائنس سیکھتے ہوں گے، کوئی ادھر بیٹھ کر میں بھی کوئی تھیسس لکھتے پڑھتے ہوں گے، کیا کچھ کرتے ہوں گے. ہم کہتے ہیں اصل میں ان کا مینٹل لیول بہت اسٹرانگ ہے نا، تو یہ پھر یہ اتنے بڑے بڑے سبجیکٹس پڑھ لیتے ہیں. ہمارے ذہن میں اکثر یہی ہے، مائی دس سن از سو انٹیلیجنٹ، چلے میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گی، یہ بہت عقل مند ہے، اس کو میں کمپیوٹر میں لے جاؤں گی. یہ سوچتے ہیں نا، ایک جملہ لکھ لیجیے، پری ریکویزٹ شرط اس دین کو سیکھنے کی از ناٹ انٹیلیجنس. آپ کتنے عقل مند ہیں، آپ کی میموری کتنی تیز ہے، اور آپ کا آئی کیو لیول کدھر ہے، وہ 10 سے اوپر 11 پہ بھی پہنچ جائے نہیں سمجھ آئے گی یہ بات. اونلی ون پری ریکویزٹ، ایک شرط ہے اس وحی کو، اس اللہ کے کلام کو سیکھنا، اور وہ کیا ہے؟ طلب، تڑپ، ایگر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورۃ طہٰ میں ایک دعا سکھائی تھی، قل ربی زدنی علما، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. آپ دیکھیے کہ ان پڑھ لوگوں نے بھی اس قرآن کو سیکھا، ایون پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز الٹرڈ، نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن کیا اس قرآن کو پڑھنے کے لیے عمر کی شرط ہے، ایج کی ہے؟ نہیں. جس میں طلب اور تڑپ ہوتی ہے، شوق ہوتی ہے، وہ ہے. بس یہ تھا سورت کا شروع کا تھیم. اب میں آپ کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتی ہوں، آپ اپنے پاس کھول سکیں تو ضرور کھولیں، آپ اس کو انجوائے کریں گے. اور حضرت ابن ام مکتوم جو تھے، ان کی تڑپ اتنے خوبصورت الفاظ سے ملتی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ آ کے اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ اور شتنی، اور اللہ کے نبی مجھے گائیڈ کیجئے، مجھے سیدھا راستہ دکھائیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ علمنی، اے اللہ کے نبی مجھے علم دیجئے، مما علمک اللہ، اس میں سے جو آپ کو اللہ نے دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کتنی اس کی تڑپ تھی. لیکن آپ دیکھیے، یہاں ایک بات اور کر کے صورت پہ لکھ کے چلتی ہوں، کہ اللہ نے ایک بلائنڈ شخص کی فیور میں نہ صرف یہ کہ یہ صورت اتاری، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابن ام مکتوم کو عزت دی اپنی پوری زندگی میں، آپ اس کے واقعات پڑھیں تو آپ رو پڑیں. ہمیں کسی کی وجہ سے ڈانٹ پڑ جائے اپنے باس سے، تم کہیں گے تمہیں نہیں میں نے چھوڑنا. اللہ کے نبی نے بالکل اس کو اپوزٹ کیا. جب حضرت ابن ام مکتوم کو دیکھتے تھے تو پیار سے ان کو کہا کرتے تھے، اے وہ شخص جس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی تھی. اور خود اپنی جگہ پہ کئی دفعہ جب مدینہ سے باہر جاتے تھے، کئی کام تھے آپ کے، تو اپنا پیچھے جس کو آپ کہہ لیں کہ سبسٹیٹیوٹ یا نائب چھوڑ کر جاتے تھے، وہ ابن ام مکتوم کو چھوڑ کے جاتے تھے. اور ان کی ایک اور خوبی بتاؤں، جب کسی جنگ کی کیفیت ہوتی، یعنی اسلام کی جو عملی جد و جہد کی کا وقت آتا نا، تو ابن مکتوم بھی آ جاتے دوسرے لوگوں کی طرح شوق میں. اللہ کے نبی کہتے، آپ وہاں کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے کہ بلائنڈ مین تو خود ضرورت مند ہوتا ہے. آپ کہتے یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے ساتھ لے جائیں، میں اللہ کے دین کے دفاع کے لیے نکلنا چاہتا ہوں. میں کیا کروں گا؟ میں جھنڈا پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا. کیونکہ اس دور کی جو جنگیں ہوتی تھیں نا، اس میں جھنڈا ہاتھ میں پکڑنا فتح کی علامت تھی. جس گروہ کا جھنڈا گر جاتا تھا، کہہ لیں وہ اس کی ڈیفیٹ تھی. تو کہتے تھے کہ میں اپنے ہاتھ کھڑا ہو کے جھنڈا تو میں پکڑ سکتا ہوں نا، اور اللہ کے نبی اگر میرا ایک ہاتھ کوئی کاٹ دے گا نا، تو میں دوسرے سے پکڑ لوں گا، وہ کاٹ دے گا تو میں اپنے گھٹنوں میں لے لوں گا، لیکن میں اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دوں گا. یہاں ایک اور سائڈ کا پوائنٹ نوٹ کیجئے، اسلامک سوسائٹی میں اس طرح کے ہینڈی کیپ اور ریٹارڈڈ لوگوں کو سائڈ لائن نہیں کر دیا جاتا، جیسے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ ملکوں میں. یہ سوسائٹی کا ایک ایکٹیو رول ہوتے تھے، ان کے اوپر بالکل کوئی سیلف پٹینس، کوئی حسرت تاری نہیں کی جاتی تھی. بس آپ اور میں یہ سوچ کر اس صورت کو سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ اور طلب کیا ہمارے بھی دلوں میں ہے، اور ہے تو اللہ اس کو بڑھا دے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. بینگ اے ہیومن، ہمارا یہ فرض ہے، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. اور اگر ہم اپنے لیے اسلام کو پسند کرتے ہیں نا، تو آپ کے کولیگس، آپ جن جگہوں سے گزرتے ہوں گے، آپ کے بچوں کے اسکولس، جہاں سے آپ شاپنگ کرتے ہیں، جہاں آپ علاج کے لیے جاتے ہیں، آپ کے پوسٹ مین، آپ کے باہر ٹریش اٹھانے والے، ٹرائی ٹو بی گڈ مسلم. آپ ان کو اپنے لفظوں سے زیادہ اپنے اعمال کے ساتھ اسلام کی خوبصورتی دکھا سکتے ہیں، اور لفظ بھی بولنے چاہیے. کہ ریئلی جس ملک میں آپ اور میں اس وقت بیٹھے ہیں نا، یہ میں آپ کو بالکل پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہاں کے اکثر لوگ تعصب نہیں، لا علمی کی وجہ سے اسلام سے دور ہے. دے نو نتھنگ، کیونکہ جو خود کسی دین پہ ہوتا ہے نا، اس کو دوسرے کا دین چبھتا ہے. یہ بیچارے تو کسی دین پہ نہیں ہے. دے سے وی آر ایتھیسٹ، यस आई एम एथियस्ट, आई एम एथियस्ट। बस उनकी उनके साथ एक तलब करें, आप आज से एक छोटा सा काम करें अपनी ब्रेक्स के दौरान। आप कहते मैं तो मुस्लिम सिस्टर्स, मैं तो मेरी दोस्तें सारी मुस्लिम्स हैं और स्कूल में तो मेरी बच्ची की सारी दोस्तें मुस्लिम हैं और मैं तो फुला। नहीं देखिए, आप तो बाद में भी बैठ जाएंगे, आप तो इन्हें तो भी कई पार्टियां खानी है वीकेंड पे, शाम को आप मिल सकते हैं। ट्राई टू सिट विद नॉन मुस्लिम्स जो आपके साथी हैं। छोटी छोटी बातें, प्यार की बातें, और उसके लिए इतना बेसिक नॉलेज तो हम सबके पास होता है, क्या छेड़ना है। खोलू ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इनको अल्लाह ताला से मिला दें। देर इज नो गॉड बट अल्लाह, हाउ इज इट पॉसिबल, लुक एट दिस, लुक एट द मून, लुक एट द स्काई। दुनिया का कोई कानून, कोई मुल्क आपको अल्लाह के बारे में बात करने से नहीं रोकता। तो अल्लाह ताला हमें ये तड़प और तलब लगा दे। आइए अब टेक्स्ट के साथ थोड़ी सी मजीद बातें करते हैं इसी के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى
عبس وتولى أن جاءه الأعمى ترشرو هو أربيرو برتي इस बात पर कि वो अंधा उनके पास आ गया। व मायुदरी का लाल्लाहु, आपको क्या खबर कि शायद यज़्ज़क्का वो पाक हो जाए, औ यज़्ज़क्करु फतन्फ़हु ज़िक्रा, या वो नसीहत पर ध्यान दे और नसीहत करना उसको फ़ायदा दे। ये चार आयात हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम की शान में अल्लाह ने बयान की है। पहली बात है, आपके पास आया, अगर आप एक एक लफ्ज़ पे गौर करें, भागता हुआ आया, जैसे आप यहाँ भागते हुए आते होंगे तो अल्लाह को कितना प्यार आता होगा। इल्म के लिए भागना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, शौक़ होना चाहिए। और दूसरी बात है कि तज़किए की नीयत हो, मैं यहाँ क्यों आती हूँ, मैं आपको सुधारने आती हूँ। ये बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है। याद रखिएगा एक बात, जो दूसरे को कोई बात बताता है ना, सबसे पहले उसके अपने कान सुनते हैं। दूसरे को बताने से ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, क्या आप खुद सुन रहे होते हैं। तो यहाँ यज़्ज़क्का और यज़्ज़क्करु फतन्फ़उ ज़िक्रा, अल्लाह कहते हैं जिसमें इतनी तड़प है, ही इज़ ईगर, आप उसको तो देखकर फ्रॉन कर रहे हैं। अम्मा मन इस्तग़ना, हाँ जो शख्स लापरवाही बरतता है, अब ये सरदारों की बात हो रही है। फ़ानता लहू तसद्दा, आप उनकी तरफ तो बड़ी तवज्जो करें, यू आर सो इंक्लाइन टू देम। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, आपकी क्या जिम्मेदारी है कि ये नहीं सुधरते। देखिए कितना प्यारा अंदाज है। यहाँ एक छोटी सी बात कहूँगी, जो नहीं सुनता ना, इट्स ओके, पीछे ना पड़े। बस दफ़ा हम दीन की मोहब्बत में, रियली हम सच्चे तो होते हैं बट हमें समझ नहीं आती, हम दीन दूसरों को देने में इतने हरीस होते हैं। अगला समझता है ये मुफ्त की चीज़ है, कोई नहीं ले रहा, ये हमें दे रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी, आप में से किस किसने पाकिस्तान में शॉपिंग की हुई है वो हाथ खड़ा करें। सभी ने की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, चले माशाल्लाह। आप पाकिस्तान में गाड़ी में रात को निकलते हैं ना, चले आइसक्रीम खाते हैं, चले बच्चों को घुमा लाएं, जहाँ गाड़ी रुकेगी ना तो देखिएगा शीशे के साथ छज्जे वाले दो तीन लोग आ जाएंगे, बाजी ये नाले ले लो, बाजी ये फलां चीज़ ले लो, ये डिच बटन ले लो, ये ले लो, हाय रोटी खानी है, बच्चों को खानी है। आप कहते ये क्या, खैर इधर उससे, आप कहते थे नहीं, वो उसको गरीब समझ के आप अभी एक पैकेट लेके रखेंगे तो दूसरा आएगा। यानी जब कोई आपके पीछे पड़ के कोई चीज़ देता है तो आप क्या सोचते हैं, बिकती कोई नहीं है, थर्ड क्लास होगी, चलें अब इसको दूसरी तरफ लें। कभी किसी डायमंड की दुकान वाले ने पीछे से बाजे दी, बस इस फ़र्क को ना कभी भूलें। लेकिन जिनके दिल में ये तड़प तलब है, मैं उनके पूरे जज्बात की कह लीजिए कि आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन कभी दीन को सस्ता ना करें। इनवाइट कीजिए, इन्फॉर्म कीजिए, मैसेज कन्वे कीजिए, कन्विंस नहीं कर सकते, लोगों के पीछे ना पड़े। मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल होता है, वही बात है, आम मैं जो खा रही हूँ तो आप क्यों नहीं खा रहे, ये सब्र भी करना पड़ता है। जब हम दीन को बहुत सस्ता करके फ्री का, मुफ्त का, और प्लीज़ आप जो कर रहे होते हैं ना उसको तो जन्नत दिख रही है। देखिए ना, आप कहते हैं ये मुझसे तो पैसे भी नहीं ले रहा, आपको क्या पता वो किससे ले रहा। आप कितने को देंगे उसको पैसे, 1000, 1200, 2000, 5000, वो नहीं लेता इतने थोड़े पैसे, उसको क्या मिलता है। वमा सलकुम अलैहि मिन अजर, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मेरा अजर अल्लाह के पास है। बस आप खीवी पे शॉपिंग करने गए, वहाँ आपने देखा कि आइल्स के अंदर एक बंदा या बंदी फेर रही है, वो आइल्स को ठीक कर रही है, जो काम करती है वहाँ फिलअप कर रही है, आपको देख के कभी कहते हैं 100 करोड़ मुझे भी दे दो, वो बोला आपसे क्यों नहीं लेते, क्या वो फ्री विली काम करें? नहीं, वो उनसे लेंगे, दे हायर्ड देम। बस दीन की दावत देने वाला भी हायर्ड ही होता है, वो भी इम्प्लॉय होता है, लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा होता है। फ़र्क ये होता है कि उसका ओनर बहुत बड़ा है। कोई कहता है ना आप इसका कुछ ले लें, वो कहता है सॉरी आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। दीन को एक रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ, लेकिन प्राउड नहीं, अकड़ नहीं, ईगो भी नहीं, लेकिन ऐसी खूबसूरती के साथ लोगों को देना चाहिए कि लोग कहें वाह क्या लेकर आए हैं। लिहाजा यहाँ एक मैसेज है, तलब तड़प के साथ कोई आए तो फिर आपने कोई अकड़ नहीं दिखानी, फिर आप ऐसे लें जैसे आपके बच्चों के ससुराल में से कोई आ गया, इज्जत करें। लेकिन अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता, अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा अलैका अल्ला यज़्ज़का, आपका क्या बिगड़ता है? हाँ वाम मन जा का यसा, वो जो दौड़ता हुआ आता है, वह हुआ यक्षा, और वो खशियत भी रखता है, यानी उसके अंदर डर भी है। फान तान हो तलहा, आप तो इससे भी रूही बरत रहे हैं। देखिए इब्ने मकतूम फ़ख्र किया करते थे, कहते हैं मेरे बारे में मेरे रब ने ये बातें की हैं। कभी आप इसके एक एक लफ्ज़ पे गौर करें ना, कम अज़ कम 5 से 6 खूबियां इब्ने उम्मे मकतूम की नायात में गुजर रही हैं, कि जो इल्म की तलब रखे ना वो ऐसा हो, खशियत भी हो, क्योंकि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। असल इल्म है ही है कि आप अल्लाह से डरते कितना है।